पहली जनवरी 1967 की वाणी चल रही थी। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, ये संगम युग है। अभी वो लोग तो नया वर्ष मनाते हैं और कह देते हैं युगादि। वास्तव में यहाँ तो नया वर्ष भी नहीं है और कोई नए युग की आदि भी नहीं है, यहाँ तो कल्प की आदि है, माने पूरी चतुर्युगी की ही आदि है, चारों युगों की आदि है। कल्प का अंत भी है, पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की आदि। नई दुनिया में नया वर्ष होगा, नया युग होगा, मनसत युग होगा और नया कल्प होगा। तो देखो तुम्हारा नया वर्ष अभी चल रहा है, नया वर्ष चल रहा है या चलने वाला है, वो तो पुरानी दुनिया का नया वर्ष बनाते हैं और तुम्हारा नई दुनिया का नया वर्ष चल रहा है, उसके लिए अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है। अभी तुम संगम युग पर हो और नई दुनिया का नया वर्ष अभी आने वाला है, नया दिन होगा, नया महीना होगा, नया वर्ष होगा। कहेंगे संबत एक एक एक, तो सतयुग जब शुरू होगा तब नया वर्ष चलेगा। अभी तो संगम युग है और ये बात भी किसी को पता नहीं है कि ये अभी संगम युग है। तुम ब्राह्मणों की सिवाय कोई को पता नहीं, वो तो समझते हैं अभी कलयुग है, कलयुग का भी आदि चरण है, अभी हजारों वर्ष कलयुग के पड़े हुए हैं। तुम बच्चों में भी ऐसे बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। संगम युग तो है लेकिन पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाले कौन कौन है, वो प्रत्यक्ष होने वाला है। इसी युग में हम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं और उत्तम पुरुष कहा जाता है देवताओं को। देवताएं हैं श्रेष्ठ श्री 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 की औलाद है, श्री श्री है शिव बाबा। अभी इस पुरानी दुनिया में तो कोई भी पुरुषोत्तम नहीं होगी। नंबर वन पुरुषोत्तम बनते हैं लक्ष्मी नारायण, पहले पहले श्री कृष्ण को कहेंगे, फिर बात आती है निवृत्ति मार्ग में, शंकराचार्य पुरुषोत्तम था जिसने पवित्रता का संन्यास धर्म स्थापन किया, परंतु वो शंकराचार्य तो फूट करके चार हो गए। अभी बाप भी आकर के पवित्रता का धर्म स्थापन करते हैं, परंतु शंकराचार्य ने तो स्थापन किया पुरानी दुनिया में, द्वापर के अंत में, और तुम्हारी स्थापना तो होती है नई दुनिया में। वो है हद के सन्यासी, अभी वो सन्यासी भी टूट करके चार शंकराचार्य हो गए। ان کی بھی کمیٹی ہوتی ہے جو آپس میں مل کر کے کسی کو سنکراچاری بناتے ہیں. اور یہاں کمیٹی کی تو بات نہیں ہے, یہاں تو راجدھانی ساپن ہو رہی ہے. نئی دنیا میں نئے ورش میں تم راجی کریں گے, تم ابھی گپت ہو. تمہارا پد مان مرتبہ سارا گپت ہے, تمہارا دان بھی گپت ہے. گپت ہونے کے کارن ابھی پوترتا پر کتنا جھگڑا چلتا ہے, کتنا تنگ کرتے ہیں, کھان پان پر بھی بہت جھگڑا چلتا ہے. کہتے ہیں پیاز کھانا پڑے گا, لہسن کھانا پڑے گا, گھر میں آدھے گیان میں چلتے ہیں آدھے گیان میں نہیں چلتے ہیں. تو کہتے ہیں ماس گوشت سب کھانا پڑے گا. کوئی کہے کہ ہم تو ویشنو بننا چاہتے ہیں, تو ہمارے ساتھ زبردستی کیوں کرتے ہو؟ ہم تو بشنو پوری کی استھاپنا میں سہیوگی ہیں, بشنو پوری بنانے میں تم جھگڑا کیوں ڈالتے ہو؟ واستو میں بشنو پوری ستیوگ میں ہوتی ہے. ابھی جو ویشنو آدھی ہیں وہ تو کلیو کی ویشنو ہے. کلیوگ میں چاروں طرف ساری دنیا میں راون راجی ہے. راون راجی کے ویشنو اور رام راجی کے ویشنو میں رات دن کا انتر ہے. ابھی ساری دنیا کے آدی مدینت کا راجی رسم رواج باپ بیٹ سمجھاتے ہیں, یہ تو تم جانتے ہو کہ ابھی ساری دنیا دشمن بنے گی. تم جانتے ہو ہم گپت وشو پر وجے استھاپن کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے آتما بننا پڑے, مانا دیہ بھانگ چھوڑنا پڑے. اس کے لیے باپ کو یاد کرنا ہے. یہ بات تم کسی کو بھی سنائیں گے تو سن کر کے خوش ہو جائیں گے, سمجھیں گے ان کو یہی نالج ملتی ہے اسپرچل فادر کے دوارا, اور تو کوئی یہ نالج دے نہیں سکتا, ایسے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ ہم سب بردرس ہیں. ضرور ان کا ایک باپ آیا ہوا ہے, ایک باپ ہے تو سبھی بردرس ہیں. باقی دنیا میں تو کہہ دیتے ہیں سبھی فادرس ہیں, یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم سبھی بردرس کا باپ ایک ہے. ان سے ابھی ہم کو ورثہ ملنا ہے, ان کی شیو جینتی بھی منائی جاتی ہے اور ان کا نام ہی ہے شیو. شیو کا جنم گایا جاتا ہے صرف رودر نہیں ہے, یہ رودر جو ہے وہ نام تو بہتوں کے رکھ دیے. میں تو اپنا نام شیو ہی بتاتا ہوں, بل شاستروں میں رودر نام رکھ دیا ہے, پرنتو میرا اصلی نام ایک ہی شیو ہے. پھر شدھ رودر نام کیوں رکھ دیا ہے جب میرا اصلی نام ایک ہی ہے؟ تو باقی نام نکلی ہوئے کیا؟ نہیں, بندی کا نام ہے شیو, ओरिजिनल में मैं बिजी हूँ, और जब शरीर में प्रवेश करता हूँ तो अलग अलग नाम पड़ता हूँ। जैसा जैसा काम करता हूँ वैसे वैसे नाम पड़ते हैं। कोई शरीर में प्रवेश करके रौद्र रूप धारण करता हूँ तो रुद्र कहा जाता है। रुद्र के बक्के जरूर रुद्र ही होंगे। कहते हैं रुद्रों ने मिलकर के प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सो तो जरूर करेंगे। शास्त्रों में सब यहाँ की बातें लिखी हुई है, लेकिन सार में बताता हूँ। अभी ये रुद्र यज्ञ रचा गया है, प्रजापिता के द्वारा ही रचा गया है। जो भी रुद्र यज्ञ में रुद्र बनेंगे वो बाप के ही बच्चे कहे जाएंगे। आदि में स्थापना हुई थी और जब अंत होगा तो रुद्रगणों के द्वारा विनाश होगा। अभी स्थापना का काम चल रहा है, स्थापना पूरी होगी, राजधानी तैयार होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। रुद्रगण कहे जाते हैं। गण का अर्थ ही होता है समूह, जिनकी यादगार में रुद्राक्ष की माला बनती है। माला का अर्थ ही है संगठन, ऐसा संगठन जो एक के स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ है और एक के ही ज्ञान के सूत्र में पिरोया हुआ है। वो मेरे जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले बच्चे हैं, उनके राज्य की मैं स्थापना करने आया हूँ। राक्ष की माला 108 की माला है। ऐसे तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं रुद्र हैं। 500 करोड़ रुद्रमाला के मणके हैं, क्योंकि जब तामसी बनते हैं तो सार विनाश में सहयोगी बनते हैं। आत्मा स्थापना का कार्य भी करती है, आत्मा विनाश का काम भी करती है, और आत्मा दिव्य गुणों की पालना का भी काम करती है। उस हिसाब से कहा गया कि 500 करोड़ रुद्र हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, लेकिन मंदिर शिव का बनाया जाता है। रुद्र का मंदिर व रुद्र की जयंती नहीं कहेंगे, रुद्र का जन्म नहीं मनाया जाता, शिव का जन्म मनाया जाता है। कारण क्या है? शिव आते हैं संसार में, प्रत्यक्ष होते हैं तो नई दुनिया की स्थापना भी होती है। नई दुनिया की स्थापना होती है तो उसकी पालना भी होती है, इसलिए शिव जयंती मनाई जाती है। जिनकी स्थापना होती है, जिनकी राजधानी स्थापन होती है और जिनकी सुख की दुनिया की पालना होती है, वही फिर जयंती मनाते हैं। और जब विकराल रूप धारण करते हैं तो विनाश होता है। तो उन विनाशकारी की जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि दुनिया का विनाश होगा फिर तो मैं चला जाऊंगा, फिर जयंती काहे की। शिव जयंती कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में देखो कितने भी नाम रख देते हैं, परंतु वास्तव में मेरा नाम एक शिव जी, शिव अर्थात कल्याणकारी। जो बोलता हूं कल्याणकारी ही बोलता हूं, जो देखता हूं कल्याणकारी ही देखता हूं, जो वाइब्रेशन छोड़ता हूं कल्याणकारी वाइब्रेशन छोड़ता हूं। हर हालत में मैं कल्याणकारी हूं, मेरे द्वारा कल्याण का कार्य हो नहीं सकता, इसलिए मेरा नाम शिव है। तुम तो आत्माएं हो, आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है, चक्र में आती है तो माया की चक्री में भी आती है। तो मनुष्य आत्माएं सदाकाल कल्याणकारी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारा नाम शालिग्राम रख दिया है, क्योंकि तुम भी शिव के समान निराकारी स्टेज को प्राप्त होते हो, लेकिन शिव में बंधन नहीं दिखाया जाता, वो सदा शिव है। और शालिग्राम में बंधन दिखाया जाता है, इसका मतलब है कि आत्माएं बंधन में आती हैं। शिव परमात्मा बल शरीर में प्रवेश करता है लेकिन बंधन में नहीं आता है। तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूं। मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा दोनों में फर्क क्या है? मैं अभोक्ता हूं और तुम भोक्ता हो। मैं स्वार्थी नहीं हूं और तुम स्वार्थी हो, चाहे देवात्माएं हो चाहे मनुष्य आत्माएं हो चाहे दैत्य आत्माएं हो, सब स्वार्थी हैं, क्योंकि सबको अपना अपना रथ है, मेरे को अपना कोई रथ नहीं है। इसलिए मेरा नाम शिव है, मैं हर हालत में परमार्थी हूं, अपना कल्याण की मुझे चिंता नहीं है। सन्यासी लोग फिर कह देते हैं कि परमात्मा सोहम आत्मा, तो देखो उनके कहने में और मेरे कहने में कितना अंतर है। बाप तो कहते हैं हम तुम सब आत्माओं का बाप, चाहे जो भी आत्माएं हो, कोई भी धर्म की हो, कोई भी देश विशेष में पार्ट बजाने वाली हो, मैं सबका बाप हूं। इसलिए कह देते हैं परम पिता, फिर कहते हैं परमात्मा। परमात्मा परम पिता क्यों नहीं कहते? परम पिता शब्द पहले क्यों लगाते हैं? जैसे कहते हैं शिव शंकर, शंकर शिव नहीं कहते, तो कारण क्या है? शिव बाप का नाम है और शंकर बड़े बच्चे का नाम है, जो देवताओं में भी बड़ा है, महादेव कहा जाता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। परमपिता अर्थात जो भी पिताएं हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं और चाहे प्रजापिता है, उन सब का बाप है। उससे बड़ा बाप कोई होता नहीं। मैं प्रजापिता का भी बाप। प्रजापिता जिसे दूसरे धर्मों में आदम एडम कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है, जो बापों का भी बाप कहा जाता है इस मनुष्य सृष्टि पर, मैं उस प्रजापिता का भी बाप हूं। इसलिए मुझे कहते हैं परमपिता। फिर बाद में शब्द जुड़ता है परमात्मा। मना मैं शिव ज्योति बिंदु परमपिता जब इस सृष्टि पर आकर के परमपिता के रूप में प्रत्यक्ष होता हूं, तो आत्माओं में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा है उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं, जिसका मैं बाप हूं। तो परमपिता माने शिव और परमात्मा माने जिसमें वो प्रवेश करता है। आत्माओं में परम पार्टधारी माने हीरो पार्टधारी माने परमपिता परमात्मा। तो जैसे आत्मा तो इनका बाप भी वही होगा, सभी आत्माएं हैं। शरीर को होते आत्मा का मर्तबा मिलता है, शरीर न हो तो आत्मा का कोई मर्तबा नहीं। अभी ऊंचते ऊंच मैं हूं, तो मैं इस सृष्टि पर ऊंचते ऊंच हूं या परमधाम में ऊंचते ऊंच गाया जाऊंगा। ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे का सवाल इस सृष्टि का है, ब्रह्मलोक का नहीं है। इस सृष्टि पर ही ऊंचे और नीचे गाया जाता है। तो ऊंचते ऊंच कहेंगे ब्रह्मा को, उससे ऊंच कहेंगे विष्णु को, और उससे भी ऊंच कहेंगे महादेव को, और इन तीन देवताओं से ऊंचा कहेंगे शिव को। वो है प्रजापिता और मैं हूं प्रजापिता का भी पिता। इन बातों को दुनिया तो कोई जानती नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है। इसलिए कहते हैं एक एक मुरली को छह छह बार पढ़ें या सुने तब बात बुद्धि में बैठेगी। कोई तुमको मुझने के लिए कहेंगे शिव बाबा आया हुआ है, तो तुम्हारे लिए तो ये नया जन्म ठहरा। तो कहो हाँ, हमारा जन्म भी नया है और संबत भी हमारा नया होता है, क्योंकि तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। तुम चोटी के ब्राह्मण हो। चोटी माना एड़ी से लेकर के चोटी तक, एड़ी माना पांव का पिछला हिस्सा और चोटी माने शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा। तो तुम चोटी के ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मणों की नौ कुड़ियां गाई जाती हैं। उन नौ कुड़ियों में तुम चोटी के ब्राह्मण हो। जब यज्ञ की आदि हुई तो तुम बच्चे चोटी में थे, बाद में वो दूसरे दूसरे परवर्ती ब्राह्मण आते गए, अभी तुम फिर से चोटी में पहुंचने वाले हो। तो जब तुम नया वर्ष शुरू करेंगे, संवत 1-1 से शुरू करेंगे, तो चोटी से शुरू करना पड़ेगा। बीच से शुरू क्यों करेंगे? तो तुमको समझाना है वहां सतयुग में हम सतो प्रधान होंगे, अभी तो इस दुनिया में सब पतितमो प्रधान है, कोई सतो प्रधान नहीं है। अगर कहें तो यही कह सकते हैं कि सिवाय एक शिव बाबा के और कोई सतो प्रधान नहीं। एक सदगुरु सच्चा और बाकी सब झूठे। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, सीढ़ी का राज भी कितना अच्छी रीति समझाया है, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, ये है सीढ़ी का राज। जिनकी जिनकी चढ़ती कला होती जाएगी वो दूसरों का भला किए बगैर रह नहीं सकेंगे। अभी तुम दूसरों का भला करते हो तो तुम गोरे बनते जाते हो। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, यहाँ तो देखो आर्टिफिशियल कितनी फैशन है। तुम जानते हो हम तो नेचुरल देवी देवता थे, ये देवताओं का राज्य हमने अनेक बार लिया है, हमें ही राज्य लेते हैं और हमें ही राज्य घुमाते हैं। उसमें भी चार युगों में, तीन युग में हम सुख में रहते हैं, तीन हिस्सा हमारा सुख का होता है और चौथाई दुख का होता है, और तुम चोटी के ब्राह्मणों के अलावा और जो होते हैं उन सब का आधा सुख होता है और आधा दुख होता है। तो तुम जास्ती सुख भोगते हो और जो ब्राह्मण होते हैं वो तुम्हारे जितना सुख नहीं भोगते, ये अंतर है चोटी के ब्राह्मणों में। अगर इक्वल सुख और इक्वल दुख हो तो ईश्वरीय ज्ञान लेने का क्या फायदा? हम ईश्वर से ज्ञान लेते हैं तो कुछ तो फायदे में रहना चाहिए, जरूर तुम्हारा सुख जास्ती होता है। क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिकल में सुखदाता बाप के बच्चे बनते हो, और वो प्रैक्टिकल में सुखदाता बाप के बच्चे नहीं बनते। तुम बाप से सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हो और वो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई नहीं पढ़ते, पिछाड़ी में तुमको थोड़ा सा दुख होता है। विवेक भी कहता है कि सुख और दुख अगर बराबर महसूस हो तो तुमको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तुमको दुख होता है अंतिम में, अंतिम जन्मों में, तो तुमको चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है। अभी तुम बच्चे समझते हो भले वो लोग नया वर्ष मनाए रहे हैं, परंतु हम तो इन सबसे न्यारे हैं, हम तो कोई उत्सव नहीं मनाते, हम कोई त्योहार भी नहीं मनाते। वो जड़ दीपकों की दिवाली जलाते हैं, हम तो आत्मा के दीपक जलाते हैं। हम उनके जड़ दीपकों की दिवाली देखने भी नहीं जाएंगे। तुमको तो नशा होना चाहिए कि हम चैतन्य दीपकों की दिवाली मनाए रहे हैं। हमारे चैतन्य दीपक जगेंगे तो सारी दुनिया में रोशनी रोशनी हो जाएगी। जैसे नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल में 6 महीने का दिन हो जाता है, ऐसे तुम्हारे लिए 2500 वर्ष तक इस सृष्टि पर दिन ही दिन होगा, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाएगी। अंधेरे का नाम नहीं रहेगा। और अभी तो तुम इस दुनिया में संगम युग को सबसे ऊंचा रखते हो, क्योंकि यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग। सतयुग त्रेता में तो कल्याण होता ही है, परंतु लॉटरी तुमको अभी मिलती है। 21 जन्मों की लॉटरी मिलती है, और कोई कंगाल को अगर लॉटरी मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होती होगी। तुमको अभी लॉटरी मिल रही है, जब लॉटरी तुमको मिलती है तो तुमको अतीन्द्रिय सुख बांटता है। उस समय दुनिया के लिए दुख की बात होगी और तुम्हारे लिए सुख की बात होगी। ये बात मुसलमानों की कुरान में भी लिखी हुई है कि जब कयामत होगी तो जो खुदा के बंदे होंगे वो बड़े आराम में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अतीन्द्रिय सुख तुमको मिलेगा, उन ब्राह्मणों को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम हो मुखवंशावली। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों पर ज्यादा तवज्जो देते हो, और वो है कुखवंशावली ब्राह्मण। जो कुखवंशावली ब्राह्मण होते हैं वो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारतवासियों को धोखा दे जाते हैं, भारत को धोखा दे जाते हैं, दूसरे धर्मों की शक्ति बढ़ाते हैं और भारत की शक्ति छीन कर देते हैं। तो वो बाप के बच्चे कैसे हुए? तुम हो डायरेक्ट बाप के बच्चे, तुम हो सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट, इसलिए तुमको सुख जास्ती मिलता है। गोप गोपियां भी तुम हो, क्योंकि तुम गुप्त रह करके पुरुषार्थ करते हो। उन ब्राह्मणों को गुप्त थोड़े ही कहेंगे, ईश्वरीय संतान भी तुम कहलाते हो, क्योंकि तुम ईश्वर से जन्म लेते हो। वो ब्राह्मण तो ईश्वर से जन्म कहां लेते हैं, ईश्वर तो आकर के ब्रह्मा द्वारा जन्म देता है। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहां है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। जब तुम्हारा ब्रह्मा ही सूक्ष्म वतन में है तो तुम यहां कहां से आ गए, तुम भी भागो सूक्ष्म वतन में। अरे ब्राह्मणों का गायन तो इस सृष्टि का है या सूक्ष्म वतन का है? ब्राह्मण तो इस दुनिया में पूजे जाते हैं, तो ये तुम्हारा गायन है, तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, ईश्वरीय संतान तुम कहलाते हो। वो ईश्वर से जन्म ही नहीं लेते, वो उनको ज्ञान किससे मिलता है? उन ब्राह्मणों को ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान का दिव्य जन्म किससे मिलता है? भगवान से मिलता है या दीदी दादी दादाओं से मिलता है? किससे मिलता है? उनको, उन ब्राह्मणों को, दीदी दादी दादाओं से मिलता है? ब्रह्मा से जन्म कहाँ मिलता है? ब्रह्मा है ही नहीं तो जन्म कहाँ से मिलेगा? और तुम्हारा तो ब्रह्मा है, तुम तो जानते हो कि मुरली में बाप ने बोला हुआ है कि ये ब्रह्मा चला जाएगा तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा कोई एक का नाम होता नहीं, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं। लेकिन तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ते हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ है बाप भी है तो माँ भी है, वो हमारा आर्ध नारीश्वर का स्वरूप है, आधा नारी और आधा पुरुष, कंबाइंड बाप दादा नाम है। वो बाप राम बाप भी है, उसमें शिव बाप तो है ही, और फिर वो हमारा दादा भी है।
पहला पत्ता वो है, वो हमारा दादा है। तो दादा लेकर आगे तो वो हमारा दादा भी है, लेकिन दोनों कंबाइंड है, एक ही तन में दोनों कार्य करते हैं, इसलिए बाप दादा है। तो वो ब्राह्मण ईश्वरीय संतान नहीं कहला सकते, न दुनिया उनको मानेगी और तुमको सारी दुनिया मानेगी कि तुम ईश्वरीय संतान हो। प्रैक्टिकल में तो देखो, रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्यंत को जान सकती हो। अगर किसी को रचयिता की भी जानकारी नहीं है तो रचना के आदि मध्यंत की जानकारी नहीं हो सकती। अभी तुमको रचयिता की जानकारी मिल रही है, रचयिता के कोई शिव ज्योति बिंदु नहीं है। शिव ज्योति बिंदु और बिंदु बिंदु आत्मा वो तो अनाद है ही है, वो रचयिता नहीं कही जा सकती। और उनके द्वारा कोई रचना भी होने की बात नहीं। आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश लेता है तब तक रचयिता नहीं कही जा सकती। तो शिव सुप्रीम सोल विश्व सुपर है, आत्मा में पार्ट प्ले करने के लिए प्रवेश करता है, तो हीरो पार्ट धारी रचयिता कहा जाता है। प्रजापिता रचयिता के कार्यकलाप को जानना, उसकी जीवन कहानी को जानना, मन बाप की जीवन कहानी को जानना। तो रचयिता की जानकारी तुम बच्चों को है और दुनिया उसके जानकारी को पूरा नहीं जानती। तुम भी नंबर बार जानते हो, मनुष्य कहते हम नहीं जानते, तुम तो जानते हो। तुम सर कहता है कि सृष्टि पर पहली पहली रचना कौन है? रचयिता कौन है? तुम कहेंगे लक्ष्मी नारायण। जो नरसिंह नारायण बनते हैं वो रचयिता है, और उनके जो बच्चे हैं जो सचिव में राधा कृष्ण बनकर के पैदा होंगे वो रचना। तो तुम्हारे पास रचयिता और रचना की आदि मध्यंत की जानकारी बच्चे जानते हो कर कहता था तो हम बच्चों को गाली दे रहे हैं और सारे घर में करा रहे हैं समझा रहे हैं बाप प्रसाद करवाते रहते हैं ब्राह्मणों को बाप प्रसाद नहीं कराते और तुमको बाप प्रसाद कराते हैं तुम जब बाप दादा के पास बैठेगी हो ये खेल बड़ा वंडरफुल है तुम कहेंगे हर पांच चार वर्ष बाद बाप आकर के हमको ये खेल समझाते तो कोई नई बात नहीं है तुम ये बात अखबार में भी डाल सकते हो कि शंकराचार्य ने पांच हजार वर्ष पहले भी भूख हड़ताल की थी इसमें कोई नई बात नहीं है ब्रह्मानुसार किसी ने शरीर छोड़ा तुम अखबार में डाल सकते हो कि पांच हजार वर्ष पहले इसने ऐसे ही शरीर छोड़ा था अभी तो तराजू में अखबार में मैगजीन में किसी ने डाला नहीं है प्रदर्शनी में लिखते हैं तुमने ये पांच हजार वर्ष पहले भी ये प्रदर्शनी देखी थी अभी फिर पांच हजार साल के बाद ये प्रदर्शन देख रहे हो तो मनुष्य की बुद्धि में आ गया ये तो गीता की बातें बताते गीता का एपिसोड पांच हजार वर्ष पहले हुआ था और पांच हजार वर्ष के बाद अब फिर गीता में एपिसोड रिपीट होता है पहले भी सारी दुनिया का ध्वंस हुआ था महाभारत युद्ध हुआ था पांच पांडव बचे थे अभी फिर महावारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है सब कह देते हैं कि गीता की बातें पांच हजार वर्ष पहले मासिक बेहद के बाद से बेहद का मशा कैसे मिलता है उनको समझाओ कि आकर के समझो बाप से राजयोग सीख करके बेहद का सुख लो लेकिन विनाश से पहले लेना है विनाश जब शुरू हो जाएगा तो बाप से वर्षा नहीं ले सकेंगे अभी शांति का पीरियड चल रहा है शांति के टाइम पर बाप की पढ़ाई पढ़ सकते हो अशांति के टाइम पर बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ी जा सकती कल्प कल्प ये प्रदर्शनी तुम बच्चे देखते हो और दिखाते हो तुम ऐसे ऐसे शुरू में लिखना चाहिए अंग्रेजी अक्षर भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं ये हिंदी की भाषा तो बाद की भाषा है पहले अंग्रेजी थी सारी दुनिया में अभी हिंदी का प्रचार अच्छा हो रहा है अभी हिंदी नेचुरल होती जा रही है वास्तव में पहले हमारी असली भाषा हिंदी नहीं थी असली भाषा थी पाली प्राकृत जो देहाती भाषाएं कही जाती है वेदवाणी कही जाती है तो असली भाषा हमारी हिंदी नहीं थी अभी तो देखो दुनिया में कितनी भाषाएं हो गई है हिंदुस्तान के हर एक टुकड़े में अलग अलग भाषा है किसी धर्मखंड में भी अलग अलग भाषाएं हो गई एक ही यूरोपीय खंड यहाँ क्रिश्चियंस का राज्य है वहां भाषाएं देखो कितनी है परंतु इनको समझाने वाला तो कोई है नहीं वो भी सब एक ही धर्म के हैं फिर भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते अभी भी इनकी आपस में लड़ाई लड़ेगी इनकी आपस में लड़ाई लड़ेगी और तुम्हारा काम बन जाएगा तुम्हारा लड़ना होता है और तुम्हारी लड़नी सफल हो जाती है बीच में तुमको मक्खन मिल जाएगा। तुम वास्तव में कोई लड़ाई नहीं लड़ते हो, तुम तो पांडव हो। पांडव कोई से लड़ाई नहीं लड़ते, तुम पंडित के पुत्र हो। तुम तो योग बल से अपने बाप से बरसा लेते हो। बाप ऐसी स्थिति परिस्थिति क्रिएट करवाई देती है कि वो आपस में ही लड़ते हैं और प्राप्ति तुमको हो जाती है। तो तुम बच्चे मोस्ट बिलेवड बाप को याद करो। कोई कोई कह देते हैं हम तो निरंतर शिव बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते हैं तो कपूरा मारते हैं। निरंतर कोई बाप को याद अभी कर सके क्यों? अभी कोई निरंतर बाप को याद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 500 करोड़ की दुनिया के बीच में विकारी वाइब्रेशन के बीच में जब तक हम रहे पड़े हैं तो संग का रंग हमको जरूर लगेगा। और संग का रंग जब तक लगता है तो हमारी बुद्धि एकाग्र हो नहीं सकती। इसलिए तुम बच्चों को इशारा दिया है कि एक दिन तुम बच्चे परमधाम को भी शक्ति पर उतार लेंगे। हमारा कोई सारी पृथ्वी के ऊपर परमधाम का वातावरण नहीं बन जाएगा, लेकिन कोई एक स्थान ऐसा होगा जहां तुम बच्चे सब इकट्ठे हो जाएंगे और बात की याद में रहेंगे। उस समय तुमको संग दोष और अनुदोष नहीं लगेगा। अभी तो तुम दुनिया में रह पड़े हो तो संग दोष और अनुदोष लगता रहता है, इसलिए माया तुमको खाती रहती है। तुम बार बार माया के पंजे में फंस जाते हो और निरंतर याद नहीं कर सकते। परंतु जो सुधुबुद्धि बच्चे होंगे वो तो कहेंगे हम तो अपना कारोबार अभी से समेटते हैं। जो अभी से समेटना शुरू करेंगे तो बाप के आह्वान पर वो बच्चे बाप के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। उस समय के लिए भूला है कि एक ही ट्रेन चलेगी, जिसको चढ़ना होगा चढ़ जाएगा, उसके बाद दूसरी ट्रेन नहीं चलेगी। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो सिंध हैदराबाद से पहली ट्रेन में जो चढ़ करके निकल गए सो निकल गए, बाकी दूसरी तीसरी चौथी जो ट्रेन चली उनमें सात काट दिए गए। तो अभी भी इनकी बुद्धि में इशारा बैठा होगा, वो अपना बुढ़िया बिस्तर समेटना शुरू कर देंगे। उस समय उनकी बुद्धि में हलचल नहीं होगी क्या छोड़ना है और क्या लेना है, छोड़े या नहीं छोड़े, चल पड़ेंगे ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, टाइम से पहुंचेंगे। तो बाप के घर में शांति धाम में पहुंच जाएंगे, वो पहला पूर्व होगा। पहला पूर्व माने चोटी के ब्राह्मण। तो तुम बच्चे हो चोटी के ब्राह्मण, तुमको चोटी का ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अभी अगर कोई कहते हैं हम तो निरंतर शिव बाबा को याद करते हैं, ये तो बकोड़े की बात है। फिर तुम कहेंगे बाप के पास पहुंचने के बाद कि हमें निरंतर याद रहती है, तो तुम्हारी बात सच्ची हो जाएगी। तुम जो संकल्प करेंगे सो सिद्ध हो जाएगा, जो बोल बोलेंगे सो सच्चा साबित हो जाएगा। निरंतर याद का प्रभाव तो होना चाहिए ना। समझ सकते हैं। तुम्हें अंतर याद करना, इस दुनिया में कोई माफी का डर नहीं है। माया और ही विकराल रूप धारण करती जाएगी, प्रकृति भी विकराल रूप धारण करेगी, आसमी गवर्नमेंट भी छोड़ने वाली नहीं है। एक एक के पैसे ढूंढ ढूंढ के जब पकड़ती जाएगी तो एक ही सारा अंत में रहेगा। इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना है। जो याद को भूलते हैं वो फिर गटर में गिर पड़ते हैं। तुम अच्छे जानते हो दुनिया में क्या क्या होता रहता है। विलायत में सात तैयारियां करते रहते हैं। विलायत में भी एक दो के बचला बहुत है। ये है वो ही महाभारत लड़ाई। अगर महाभारी महाभारत लड़ाई का एपिसोड चल रहा है तो जरूर कोई राजयोग सिखाने वाला भी होगा। महाभारत में गीता एपिसोड है। गीता महाभारत का अंश है। ऐसे गीता ज्ञान कोई तो सुना भी नहीं तो कोई सुनता नहीं है। महाभारत सुनाएंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, लड़ाई झगड़े की बातों में। लेकिन जब भागवत सुनाते हैं तो ढेर के जोड़े मनुष्य इकट्ठे हो जाते हैं। क्या कारण है? ज्ञान की बातें गीता में है जो भगवान ने डायरेक्ट सुनाई, वही बातें महाभारत में है। और महाभारत से कनेक्टेड सारी बातें जो है वो भागवत में भी है। फिर भागवत सुनने के लिए लोग क्यों इतने इकट्ठे हो जाते हैं? छुट्टी कहाँ होती है? यहाँ शूटिंग होती है। अभी गीता ज्ञान अमृत पिलाया जा रहा है तो कोई सुनता नहीं। आगे चलते जब रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे पीछे ढेर मक्खियां भाग खड़ी होंगी। बहुत बड़ा भागवत हो जाएगा। तो उस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनेगी। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में भागवत में बहुत इकट्ठी हो जाती है। महाभारत की कथा होगी, गीता की समझाने कोई पंडित देवेगा तो उतने लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो भक्ति मार्ग में जो भी समझदार चलती है वो यहाँ की यात्रा चलती है। तो अभी महामारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, जरूर कोई राजयोग सिखाने वाला भी है। परंतु गलती है कर दी है कि राजयोग सिखाने वाले को द्वापर के अंत में ले गए। महाभारत का एपिसोड द्वापर में दे दिए। अब वास्तव में द्वापर में कोई भगवान नहीं आते और कोई भी युग में नहीं आते। वो तो सिर्फ कलयुग के अंत में आते हैं। तो बुद्धि में नहीं आता है इस समय वो राजयोग सिखाने वाला कहा है? देखो कितनी है गुप्त वाली है। और मनुष्य तो देखो क्या क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाते जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते जाते हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बाप को तरस भी पड़ता है। बेचारे ऐसे ही मुफ्त में मारे जाएंगे। वो अंधेरे में जब सच्चाई का पता पड़ेगा तो हाथ फेल होने लगेंगे। ढेरों के हाथ फेल होंगे। पहले ब्राह्मण की दुनिया में हो मिला भी है। जिस रूप में तुमको आगे मिला था, आदमी मिला था, अंत में भी मिले। कहते भी मैं साधन कर ले आता हूँ, असाधारण दूर के चित्र में नहीं आता हूँ, लतापति करोड़पति के चित्र में नहीं आता हूँ, मैं बहुत साधन तन में आता हूँ। अगर मैं साधन तन में ना आऊं तो गरीब बच्चों से आकर कैसे मिलूं? कोई बड़े आदमी में आऊंगा तो गरीब दिमाग कैसे खा जाऊंगा? तो देखो, ये प्रगति का नाम गाया हुआ है, इसलिए पूछते हैं इस ब्रह्मा का बाप कौन है, तो क्या करेंगे? ब्रह्मा का बाप जरूर कहेंगे प्रगति पर। ब्रह्मा रचना है, रचेता है, रचना है, तो रचेता भी हूं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुआ। ना समझने के कारण देखो क्या क्या कह देते हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। किसी में बाप ने प्रवेश किया है तो ये भी बच्चा बने, ये कोई समझ नहीं सकता कि ब्रह्मा का बाप कौन है। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म मतलब मिले जाते हैं, परंतु प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजापिता होगा। जब तक 500 करोड़ की प्रजा इस सृष्टि पर मौजूद है तब तक प्रजापिता भी इस सृष्टि पर मौजूद रहेगा। बाप बच्चों का उद्धार करने के लिए इस सृष्टि पर बांधा हुआ है। कहते ब्रह्मा के मुकुटमल से ब्राह्मण पैदा हुए, ये भी गुप्त बात है। बाप ने अपना बनाया है और संन्यास कराया है, और बिहार का संन्यास है। यदि बिहार का संन्यास बच्चे करते हैं तो नाम बदल जाते हैं। क्या ब्रह्मा ने बिहार का संन्यास किया तो दादा लेखराज से नाम बदलकर क्या हो गया? ब्रह्मा हो गया। ऐसे ही जो भी मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी, नंबर बार प्रत्यक्ष होंगी और उनके नाम बदलते जाएंगे। लौकिक नाम बदल करके अलौकिक नाम बदलेंगे। तो 33 करोड़ देवताएं नंबर बार है, मित्र देव मुख्य है, फिर फर्स्ट क्लास है राष्ट्रदेव, फिर है इच्छुआत। यदि के राज में भी नाम रखते थे लेकिन वो सब झूठे साबित हो गए। नाम रखे और भाग गए तो क्या फायदा हुआ? अभी अंत में फिर नाम प्रत्यक्ष होंगे। नाम रखे नहीं जाएंगे, अपनी अपनी क्वालिटी के आधार पर, अपनी अपनी दृष्टि वृत्ति के आधार पर, अपनी अपनी कृति के आधार पर